नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, भारत और श्रीलंका सदियों से विकसित सभ्यतागत, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंधों से जुड़े हैं। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ युद्ध विराम सबसे कमजोर स्थिति में और लाइफ सपोर्ट पर है। और बांग्लादेश ने भारत में ICC T20 क्रिकेट विश्व कप से अपनी टीम के हटने के कारणों की जांच के लिए समिति गठित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा घर से काम, ऑनलाइन कक्षाएं और वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई।
पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है तथा रसोई गैस की आपूर्ति लगातार हो रही है। पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम पर कल नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि LPG वितरण केंद्रों पर किसी अभाव की सूचना नहीं है।
माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
रसायन और उर्वरक मंत्रालय में अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में खरीफ सीजन के लिए 51% से अधिक उर्वरक भंडार उपलब्ध है।
फॉर द सीजन ऑफ खरीफ 2026,
खरीफ 2026 सीजन के लिए उर्वरकों का भंडार 51% से अधिक उपलब्ध है। प्रमुख उर्वरकों की अधिकतम खुदरा मूल्य MRP में भी लगभग स्थिरता बनी हुई है। संकट काल के बाद देश में उर्वरकों का घरेलू उत्पादन 76.78 लाख मीट्रिक टन रहा है, जबकि आयात के माध्यम से 19.94 लाख मीट्रिक टन उर्वरक प्राप्त हुए हैं। संकट की स्थिति के बाद लगभग 97 लाख मीट्रिक टन उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पहले चरण में शुक्रवार को प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे।
संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नरेश विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा से नीदरलैंड्स के साथ संबंधों को नई गति मिलेगी। इसके बाद श्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथनबर्ग पहुंचेंगे। वहां स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जाएगी तथा व्यापार और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के नए उपाय तलाशे जाएंगे। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन के साथ उद्योग जगत के प्रमुखों को संबोधित करेंगे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि भारत और श्रीलंका सदियों से विकसित सभ्यतागत, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंधों से जुड़े हैं। संसद भवन में श्रीलंका की महिला सांसदों के प्रतिनिधिमंडल से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देशों की साझा बौद्ध विरासत आपसी संबंधों की मजबूत नींव है। ये प्रतिनिधिमंडल श्रीलंका की महिला और बाल मामलों की मंत्री सरोजा सावित्री पॉलराज के नेतृत्व में भारत आया है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका और ईरान के बीच कमजोर संघर्ष विराम के लाइफ सपोर्ट पर होने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी के बाद राजनयिक तनाव गहरा गया है। ईरान ने शांति प्रस्ताव में अमरीकी प्रतिबंध हटाए जाने, ईरान की फ्रीज पर संपत्तियां खोलने, अमरीकी नाकाबंदी समाप्त करने और होर्मुज जलडमरू मध्य पर ईरानी प्रबंधन को मान्यता देने की मांग की थी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की इन शर्तों को नामंजूर कर दिया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शांति प्रस्ताव खारिज होने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक का उछाल आया है।
ईरान की मांगे मुख्य रूप से युद्धकालीन परिस्थितियों और आर्थिक दबावों पर केंद्रित रही हैं, न कि तत्काल परमाणु रियायतों पर। लेकिन फिलहाल अमेरिका इन मांगों को मानने के पक्ष में नहीं है। युद्ध के दबाव और आर्थिक संकट के कारण स्थिति और जटिल होती जा रही है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात बुनियादी ढांचे पर हुए हमलों पर अपनी प्रतिक्रिया तय कर रहा है। उसने एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया है जिसका उद्देश्य देश पर 2,800 से अधिक ड्रोन और मिसाइल हमलों से हुए नुकसान का दस्तावेजीकरण करना है। संयुक्त अरब अमीरात अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी जवाबदेही तय करने और अपने प्रमुख स्थलों तथा ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हुए हमलों के लिए मुआवजे की मांग करने की तैयारी कर रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
पाकिस्तान ने अमरीका के हवाई हमलों से बचाने के लिए ईरान के सैन्य विमानों को अपने हवाई अड्डों पर उतरने की अनुमति दे दी है। रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने 28 फरवरी को शुरू हुए अमेरिका ईरान संघर्ष समाप्त करने में पाकिस्तान की मध्यस्थता भूमिका के मूल्यांकन की मांग की है। अमरीकी अधिकारियों ने कहा कि अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अप्रैल में संघर्ष विराम घोषणा के तुरंत बाद ईरान ने एक खुफिया विमान सहित कई विमान पाकिस्तान के नूर खान हवाई अड्डे पर भेजे थे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ताइवान और ऊर्जा सुरक्षा उनकी आगामी चीन यात्रा के दौरान बातचीत के प्रमुख मुद्दे रहेंगे। उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के साथ अपने संबंधों की सराहना करते हुए विश्वास व्यक्त किया कि ताइवान को लेकर तनाव नहीं बढ़ेगा।
व्हाइट हाउस में कल मात्र स्वास्थ्य कार्यक्रम में श्री ट्रंप ने कहा कि उनका प्रशासन चीन के साथ बेहतर तरीके से काम कर रहा है। उन्होंने पूर्व अमेरिकी प्रशासन पर चीन को अमेरिका का फायदा उठाने देने का भी आरोप लगाया। श्री ट्रंप ने चीन से संबंधित अपनी टिप्पणियों को पश्चिम एशिया में व्यापक तनाव और होर्मुज जलडमरू मध्य बंद किए जाने की चिंताओं से जोड़ा। उन्होंने कहा कि चीन को अपने तेल भंडार का लगभग 40% हिस्सा होर्मुज से प्राप्त होता है। श्री ट्रंप ने कहा कि शी चिनफिंग के साथ शिखर सम्मेलन स्तर की वार्ताओं में ऊर्जा और ईरान प्रमुख विषय होंगे। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
बांग्लादेश में क्रिकेट टीम के भारत में आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप से हटने के कारणों की जांच के लिए 3 सदस्यों की जांच समिति गठित की गई है। एक रिपोर्ट।
इस साल 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में हुई T20 विश्व कप से बांग्लादेश ने अपना नाम वापस ले लिया था। यह फैसला तब लिया गया जब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने सुरक्षा चिंताओं के कारण बांग्लादेश के मैच भारत से श्रीलंका स्थानांतरित करने की मांग को ठुकरा दी। विवाद तब शुरू हुआ जब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने कथित तौर पर कट्टरपंथी समूहों से धमकियों के बाद बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान को IPL से बाहर कर दिया। हालांकि ICC ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त है, लेकिन इसके बाद अंतरिम सरकार ने BCB को टूर्नामेंट से हटने का निर्देश दिया। नवल सिंह परमार, विश्व समाचार, ढाका।
आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है। स्वास्थ्य सेवा में नर्सों के योगदान को मान्यता देने के लिए प्रत्येक वर्ष 12 मई को ये दिवस मनाया जाता है। फ्रेंच रिवेरा में स्वतंत्र सिनेमा का वार्षिक उत्सव कांस फिल्म महोत्सव आज से शुरू हो रहा है। जॉन ट्रिवोल्टा, एडम ड्राइवर और बारबरा स्ट्रीसेंट सहित कई सुपरस्टार रेड कारपेट पर नजर आएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री शुक्रवार से संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर होंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, भारत और श्रीलंका सदियों से विकसित सभ्यतागत, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंधों से जुड़े हैं और बांग्लादेश ने भारत में ICC T20 क्रिकेट विश्व कप से अपनी टीम के हटने के कारणों की जांच के लिए समिति गठित की। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।